ओम शांति। आज के प्रातःकालीन सत्र में हमारे बीच में पधारे हैं आदरणीय राजयोगी भ्राता प्रेम भाई जी। एक हाथ हिलाकर भ्राता जी का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। आप सेठों की नगरी इंदौर से निकले ईश्वर के अनमोल रतन है। 1979 में आपने अपनी मेडिकल स्टडीज पूरी की ऑन्कोलॉजी में, और उसके बाद 1980 में आपको बाबा का ज्ञान मिला। तो बाबा का ज्ञान और लौकिक ज्ञान दोनों को लेकर आप विदेश गए। 10 वर्षों तक अपना प्रोफेशनल जॉब किया वहां पे, और पुनः भारत में आकर 5 वर्षों तक मुंबई में अपने प्रोफेशनल जॉब की। और 1996 में जब यज्ञ अपनी डायमंड जुबली मना रहा था, आप मधुबन में आए और अपना जीवन ईश्वरीय सेवाओं के लिए समर्पित किया। तब से लेकर आज दिन तक हेडक्वार्टर में रहकर सभी कैंपसेस में देश और विदेश में अपनी निस्वार्थ सेवाएं देते हैं। आप बाल ब्रह्मचारी बाबा के ब्रह्मा कुमार रतन हैं, और समय समय पर जो मेडिकल विंग है उसकी जो कॉन्फ्रेंसेस होती है उसके साथ भी आप एसोसिएटेड हैं, और हमारा शांति वन में जो एवर हेल्दी हॉस्पिटल है वहां पर भी आप अपनी ऑनररी सर्विसेज देते हैं। आज हमारे बीच में एक बहुत सुंदर विषय के साथ, वृत्ति द्वारा सेवा कैसे करें, सुनते हैं भ्राता जी से। आदरणीय भ्राता जी,
ओम शांति। पहले हम आप लोग बैठे हुए हैं तो खड़े हो जाएं, थोड़ा मेंटली फिजिकली चार्ज करेंगे।
उसे कह दो हाय 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 हाय, जो दिल ना लगे उसे कह दो बाय 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 बाय। आने दो दिल में आ जाने दो, कह दो मुस्कुराहट को हाय 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 हाय। जाने दो दिल से चले जाने दो, कह दो घबराहट को
जिंदगी।
कल की मुरली में स्लोगन था। क्या स्लोगन था? बेहद की सेवा में अगर श्रेष्ठ वृत्ति है तो विश्व कल्याणकारी बनेंगे। अगर विश्व कल्याणकारी बनना है तो श्रेष्ठ वृत्ति चाहिए। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है, वृत्ति क्या है? ये वर्ड कई मुरलीस में आया और बाबा ने हर मुरली में कहा कि वृत्ति से वृत्तियों को बदलो, वृत्ति द्वारा सेवा करो, क्योंकि वृत्ति फास्ट है, सूक्ष्म है, माइक्रो है। हमारे हर कर्म का आधार भी हमारी वृत्ति है। वृत्ति बीज है, सीड है। अब वृत्ति का एक मीनिंग होता है परसेप्शन, जो मैं देख रहा हूं, फील कर रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं, मेरी जो फीलिंग है, जो मेरे अंदर है, वो मेरी वृत्ति है। अब इंग्लिश में उसको कह सकते हैं एटीट्यूड। जो भी मुरलियों में ट्रांसलेशन हुआ उसमें एटीट्यूड दिया, कल भी था एटीट्यूड। अब जनरली एटीट्यूड का अर्थ होता है जो मेरा देखने का नजरिया है, दृष्टिकोण है, वे ऑफ अप्रोच है, उसको कहते हैं एटीट्यूड। अब जो दूसरा मीनिंग मेरे को अच्छा लगता है उसका अर्थ है मन की वर्तमान स्थिति, प्रेजेंट, मन की वर्तमान स्थिति, क्योंकि मन की स्थिति बदलती रहती है। अभी ठीक है, थोड़े समय बाद डाउन है, तो वृत्ति बदलती रहती है, पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी हो जाती है। और अभी जो वातावरण हम सभी देख रहे हैं हेवी है, बाहर की दुनिया में जो वातावरण है हेवी होता जा रहा है, नेगेटिव होता जा रहा है, और इसीलिए डिप्रेशन बहुत कॉमन प्रॉब्लम बढ़ रहा है, बन गया है। आज दुनिया में देखें, मेडिकल साइंस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ गया है डिप्रेशन। डिप्रेशन का अर्थ होता है निराशा, कोई खुशी नहीं, उमंग नहीं, उत्साह नहीं, एक लेवल पर काम कर रहे हैं। वो कभी कभी हम भाई बहनों में भी आ जाता है। चलते चलते हम भी थोड़ा कभी कभी डाउन हो जाते हैं, टेम्पररी होता है, टेम्पररी नॉर्मल है। हर कोई हर समय खुश नहीं रह सकता 100%, थोड़ा कम होता है, वो फिजियोलॉजिकल है। पर मैं कंटिन्यूस निराश रहता हूं, मेरी वृत्ति ही नेगेटिव हो गई है, हर चीज को नेगेटिव एंगल से ही देख रहा हूं, पहला विचार ही नेगेटिव आता है, क्या होगा, कहीं नुकसान तो नहीं होगा, तो वातावरण हेवी होता जा रहा है। अब इस हेवी वातावरण में बाबा ने कहा वाचा की सेवा, वाणी की सेवा एक लेवल तक काम करती है। हम सभी ने वाणी की सेवा अच्छी तरह करी और कर रहे हैं, पर उसका पेनिट्रेशन बहुत कम रहता है। पेनिट्रेशन यानी अंदर तक उस आत्मा को फील होए कि ये कुछ बोल रहे हैं, वो कम होता है। इसीलिए बाबा अब कह रहा है हमें तीनों रूप से सेवा करनी है, मनसा वाचा कर्मणा, चाल चलन। ज्यादातर बाबा जोर दे रहा है चेहरे से और चलन से सेवा करनी है। हम सभी ने देखा एक समय अभी जब कोरोना का था उसके बाद का पीरियड देखा, उस समय का पीरियड देखा तो लोगों में निराशा थी, चिंताएं थी। उसके बाद का पीरियड मैं देख रहा हूं लोग अब सुनना नहीं चाहते, सुनने की शक्ति कम हो गई। इसलिए बाबा ने कहा ऐसा समय आएगा जब आप सुनाने की सेवा थोड़ा कम करना पड़ेगी, मनसा सेवा ज्यादा करना पड़ेगी, वृत्ति से वृत्तियों को बदलना है। तो जो मेरी वर्तमान स्टेज है, स्थिति है मन की, उसको मेरे को ठीक करते रहना है। वृत्ति क्या होती है? वृत्ति से वाइब्रेशन बनते हैं और वाइब्रेशन से वातावरण बनता है, एनवायरमेंट बनता है। वृत्ति से वाइब्रेशन बनता है, वाइब्रेशन से वातावरण बनता है, एनवायरमेंट बनता है। तो कौन सी चीज स्ट्रांग हो गई? वातावरण स्ट्रांग है कि वृत्ति स्ट्रांग है? वृत्ति स्ट्रांग है। जो एक सेइंग है, आई एम इन द वर्ल्ड और वर्ल्ड इज विद इन मी, मैं दुनिया में हूं कि दुनिया मेरे अंदर है। अगर मैं कहूंगा कि आई एम इन द वर्ल्ड, मैं दुनिया में हूं, तो क्या होगा? दुनिया का असर आएगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, इफेक्ट आएगा, असर आएगा। तो मेरी वृत्ति भी चेंज होती रहेगी। पर दुनिया मेरे अंदर है, जो लॉर्ड श्री कृष्ण का क्या दिखाया था, हाथ में क्या है? गोला है। इसका अर्थ क्या है? वर्ल्ड मेरे अंदर ही है, मैं वर्ल्ड को कंट्रोल कर रहा हूं, न कि वर्ल्ड मेरे को कंट्रोल कर रहा है। तो मेरे को क्या होना पड़ेगा? मास्टर सर्वशक्तिवान बनकर पहले तो खुद की कर्म इंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ेगा, खुद का स्वराज्य अधिकारी बनना पड़ेगा। जब तक मेरा खुद पर रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर नहीं है तो दूसरों पर नहीं कर सकता। मैं ही वीक हूं, मैं ही कमजोर हूं, और ज्यादातर प्रॉब्लम मनुष्य के 99% उसके खुद के ही रहते हैं, सेल्फ क्रिएटेड, उसने ही क्रिएट किया। विचार भी कैसे होते हैं, थॉट्स भी क्या होते हैं, हम ही क्रिएट करते हैं, और हम ही क्रिएट करते हैं, हम ही उसमें ट्रैप में फंस जाते हैं, फिर निकलना मुश्किल हो जाता है। जो अभिमन्यु का दिखाया, अंदर चला गया पर बाहर निकलने का रास्ता उसको क्लियर नहीं था, कंफ्यूजन था। ऐसे ही अभी आत्माओं की स्थिति कंफ्यूज्ड हो गए हैं, जिसको हम लोग कहते हैं साइकोलॉजी में ड्वेलिटी हो गई है। ड्वेलिटी का अर्थ है दो, हर चीज में दो आंसर आते हैं, ये करूं कि ये करूं, ये करने से क्या होगा, ये करने से क्या होगा, करूंगा तो क्या होगा, कर्म का फल क्या होगा, उसका डर आता है। तो उसके कारण वो निर्णय और डिसीशन पावर ले नहीं पाता है, ड्वेलिटी। और जहां ड्वेलिटी है वहां कंफ्यूजन है, कन्फ्लिक्ट है। तो पहले तो हमें अपनी उस ड्वेलिटी को ठीक करना पड़ता है जिसको बाबा ने शब्द दिया कर्मातीत। कर्मातीत का अर्थ क्या है? कर्म कर रहा हूं पर कर्म के बंधन में नहीं आ रहा हूं। कर्म कर रहा हूं, कर्म का रिजल्ट क्या होगा उसकी चिंता नहीं है। मेरा काम है कर्म करना, जो गीता में भी कहा गया, कर्म करते रहे, पुरुषार्थ करते रहे, उसके फल की चिंता मत कर। फल हमारे हाथ में नहीं है। अगर मैं प्रयत्न करते रहूंगा, एफर्ट करते रहूंगा, तो फल अच्छा ही आएगा। फल की चिंता करूंगा तो डिसीजन नहीं ले पाऊंगा और रुका रहूंगा, और वो मेजर कारण है डिप्रेशन का, एक जिसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेशंस, उसकी बढ़ जाती है। और जब एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, अपेक्षाएं बढ़ जाती है, तो स्ट्रेस होता है, तनाव आता है। तो वृत्ति से वाइब्रेशन, वाइब्रेशन से वातावरण। अब मैं कहीं भी हूं, किधर भी हूं, चाहे नेगेटिव कंडीशंस हैं, मैं जॉब कर रहा हूं, मैं ड्यूटी कर रहा हूं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब नेगेटिव है, मेरे आसपास सब 99 लोग नेगेटिव हैं, पर मेरा काम क्या है? उस 99 नेगेटिविटी में भी मेरे को पॉजिटिव रहना है। वहां मेरे को अपनी वृत्ति से वातावरण को ठीक करना है, क्योंकि वृत्ति बीज है, सीड है। मुझे याद आ रहा है दादी जानकी जी का, जब वो पूना में सेवा में थी तो मार्केट जाती थी सब्जियां लेने। वो हर दिन देखती थी, एक माता उनको देखकर उसका चेहरा थोड़ा डाउन हो जाता था, चेहरा जिसको हिंदी में कहें फूल जाता था, अच्छा नहीं लगता था उसको दादी जानकी। फिर एक दिन किसी भाई ने उनको बुलाया अपने फ्लैट में, दादी जी गई, उसी माता ने फ्लैट का दरवाजा खोला जो रोज मार्केट में मिलती थी। वो फिर चेहरा और उनको बिठाकर वो चली गई। वो भाई आया जिसने बुलाया था, उसने उसको भी बुलाया जो माता डाउन हो जाती थी, चेहरा जिसका बदल जाता था। दादी जानकी जी ने पूछा, मैंने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर ऐसा क्यों? तो उस माता ने कहा, दुनिया में इतना दुख है, तकलीफें हैं, पर आपका चेहरा हमेशा खुश रहता है, उसको देखकर मैं अंदर ही अंदर। तो दादी जानकी जी का आंसर सुनिए, बोला, मैं मानती हूं कि 100% दुख है, तकलीफ है, निराशा है, लोगों के चेहरे डाउन है, पर मैं उसमें 1% अगर कम करती हूं खुश रहकर, तो वो 99% हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम सब भाई बहन खुश होकर उसको ऐड करते हैं तो खुशी बढ़ती जाएगी। और इसीलिए थर्ड संडे रखा गया, थर्ड संडे को सब मिलकर कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, कलेक्टिव चेतना का योग जब करते हैं पूरे वर्ल्ड में, तो वो वाइब्रेशन वातावरण को बदलता है। उसमें से चाहे हम 15, 20, 25 अच्छी तरह करते हैं योग, तो वातावरण बदलता है, वाइब्रेशन जाते हैं और वाइब्रेशन ट्रांसफर होते हैं। वाइब्रेशन जो भी मैं अंदर मेरी वृत्ति है वो ट्रांसफर हो रही है, जा रही है। एक राजा था और उसका कारोबार मंत्री देखते थे। राजा इंस्ट्रक्शन देता था, मंत्री लोग करते थे। वो जो चीफ मेन मंत्री था उसको बोलता था, देखो मैं तो कितनी अच्छी अच्छी योजनाएं देता हूं और आप लोग अप्लाई करते हो, पर मेरे अंदर कभी कभी कुछ और फील होता है कि मैं टैक्स भी लगा लूं, ये भी कर लूं। तो मंत्री ने राजा को कहा, ऐसा मत बोलिए, आपका जो अंदर है वो बाहर जाता है। राजा ने इग्नोर किया, ऐसा कैसे होगा, अंदर का किसको क्या मालूम पड़ेगा, मैं तो बाहर का जो अनाउंसमेंट करता हूं, योजनाएं, वही प्रजा को मालूम है और आप लोग करते हो। तो मंत्री ने कहा ठीक है। एक दिन शिकार करने को निकले राजा और मंत्री, शिकार वाली ड्रेस पहनी हुई थी। चलते गए चलते गए, गांव के बाद जंगल आने लगा तो एक व्यक्ति को राजा ने देखा। राजा ने कहा ये कौन है? तो मंत्री ने कहा ये दूध वाला है, एक गांव से दूसरे गांव दूध ले जाता है। राजा ने कहा जरूर ये पानी मिलाता होगा दूध में। आगे पहुंचे उस व्यक्ति के पास, मंत्री ने इनडायरेक्टली उसको बोला युद्ध चल रहा है, उसमें हमारे राजा घायल हो गए हैं, क्योंकि वो नहीं पहचान रहा था, तो वो तो शिकार वाली ड्रेस में थे, बहुत घायल हो गए, बचेंगे कि नहीं। वो दूध वाला भी कहता अच्छा है, मेरे को क्या लेना देना, बचे या ना बचे, चले जाएं तो और अच्छा है। मंत्री राजा को बड़ा फील हुआ, आगे गए। आगे एक ओल्ड लेडी लकड़ी का बंडल लेकर आ रही थी। राजा ने पूछा ये कौन है? तो मंत्री ने कहा ओल्ड लेडी है, अपना लकड़ी काटकर जंगल से अपने घर जा रही है। राजा ने कहा कितनी तकलीफ में है, इसको आप कल बुलाना और राज्य से कुछ दें। जैसे ही वो उस ओल्ड लेडी के पास पहुंचे, मंत्री ने वही बात कही कि युद्ध में राजा घायल हो गए हैं, बचेंगे कि नहीं। ओल्ड लेडी बिल्कुल लकड़ी का बंडल छोड़कर बोलने लगी, परमात्मा को, भगवान को, इसको बचाओ, कितने अच्छे राजा हैं, कितने अच्छे वो हैं, सबकी पालना करते हैं। आगे गए, मंत्री ने कहा देखो जो मैं बोलता था उसका आंसर आ गया, आपने दूध वाले के बारे में नेगेटिव सोचा, तो उसने नेगेटिव बोला, आपने ओल्ड लेडी के बारे में अच्छा सोचा, तो उसने अच्छा बोला। तो जो बाबा भी बताता क्या है, दुआएं दो और दुआएं लो। वाइब्रेशन का अर्थ ही है हमारी जो फीलिंग है, वेव्स हैं, एनर्जी है, वो जाती है, पूरे यूनिवर्स में जाती है, इंटरैक्ट करती है, पहुंचती है। इसीलिए कभी भी किसी के बारे में ना नेगेटिव बोलना है ना सुनना है। अगर हम बोलते हैं नेगेटिव बोलते हैं, हमें लगता है कि कोई नहीं, उसको क्या पता लगेगा, मैं तो बोल रहा हूं। पर जो उसके अंदर है, जिस व्यक्ति के बारे में हम नेगेटिव बोल रहे हैं, उसके प्रॉब्लम भी सब हमारे में आ जाएंगे। उसको बीमारी होगी तो वो बीमारियां भी हमारे में आ जाएगी। इतना डीप वृत्ति काम करती है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, एक बहुत अच्छी एक लेडी आई थी, हीलर, एक्यूपंक्चर वाली, उसने बताया था कि कैसे उसने घुटने के दर्द को एक लेडी का ठीक किया था। उसको घुटने के दर्द होता था, उस लेडी को बोला, डॉक्टर ने कहा सर्जरी करना पड़ेगी। वो लेडी उसके साथ बैठ गई और पूछने लगी, आप क्या सोचते हो? बोला, मैं अपनी सास के बारे में सोचती हूं और काफी नेगेटिव सोचती हूं। सास को घुटने का प्रॉब्लम था, सास के घुटने का प्रॉब्लम उसको भी ट्रांसफर हो गया। एनर्जी ट्रांसफर होती है, जो भी हम सोच रहे हैं, जो हमारी वृत्ति में है, वो ट्रांसफर हो रहा है, न चाहते हुए भी जा रहा है। इसीलिए वृत्ति से सेवा करनी है तो पहले वृत्ति को पॉजिटिव और पावरफुल बनाओ, और वृत्ति पावरफुल बनती है पवित्रता से, प्यूरिटी से, क्लियरिटी से। एक भी मेरा किसी के प्रति कोई नेगेटिव संकल्प नहीं, निस्वार्थ निर्संकल्प स्थिति हो, हर एक के प्रति रहम की भावना हो, जिसको ह्यूमैनिटी कहते हैं। इस साल ब्रह्म कुमारी का साल ही पूरा क्या मना रहे हैं, काइंडनेस और कंपैशन, दया करुणा, वो हमारा इंग्रेडिएंट है, ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। देवता तो हम बनेंगे, वहां कोई किसी चीज की जरूरत नहीं होती, पर ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ही क्या है, पवित्रता, दृष्टि, वृत्ति, संकल्प में। अगर करुणा दया भावना नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है, तो हम ब्राह्मण नहीं है, चाहे ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान एक लेवल है, पर अंदर वृत्ति तक वो भावना जब होती है तब दूसरों को जाती है। एक राजा था, वो काफी ओल्ड हो गया था। राजा ने सोचा, मेरा उत्तराधिकारी कौन होगा? उसने कहा, उत्तराधिकारी भी ऐसा होना चाहिए जो प्रजा के लिए, भले के लिए काम करे, प्रजा को समझे। हाथ उठाए, हाथ उठाए, हाँ, और कहे, आई एम द बेस्ट। हाँ, बोलो बोलो, आई एम द बेस्ट, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम ब्यूटिफुल, दया का सागर हूं। तो राजा ओल्ड हो गया था, उसने सोचा सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसने घोषणा करवा दी कि मेरे को उत्तराधिकारी चाहिए और ये कंडीशन उसमें होना चाहिए, उसको प्रजा के लिए प्रेम दया करुणा होना चाहिए, ये कंडीशन है। कई यंगस्टर्स आने लगे, एक बैगर था, भिखारी था, उसने सोचा मैं भी चलता हूं। उसके पास उसने थोड़ा बहुत इकट्ठा किया, कपड़े नहीं थे तो कपड़े थोड़े ठीक से पहने, खाना इकट्ठा किया और चल पड़ा। जैसे ही राज्य के नजदीक पहुंचा तो एक बहुत गरीब व्यक्ति बैठा हुआ था, ठंड से कांप रहा था, और उसको बोला कि मेरे को बहुत भूख लग रही है, ठंड में कपड़े नहीं है। उसने सोचा, मैं जा रहा हूं राज्य में, महल में, फिर भी इस व्यक्ति को मेरे से ज्यादा जरूरत है। उसने अपने कपड़े जो थे थोड़े उसको दिए, खाना भी उसको थोड़ा दिया जो भी था, और फिर महल में गया। महल में उसको एंट्री करके वो रुका। फिर अगले दिन राजा आया और ये व्यक्ति भी गया। जैसे इसने आंखें ऊपर करी तो देखा राजा तो वही था जो भिखारी बनकर बैठा हुआ था। राजा ने कहा, बिल्कुल ठीक है, मैं ही वो था, और मैं एग्जाम ले रहा था और तुम उसमें पास हो गए। तुम्हारे में मानवता है, करुणा है, दया है, मेरे को ऐसा ही राजा चाहिए जो व्यक्ति लोगों के कल्याण के लिए काम करे। राजा वही बनता है, सत्ययुग और त्रेता में राजा वही बनेगा जो पूरे विश्व से, यूनिवर्स से कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है। हमने दादियों को देखा, बड़ी दादी, दादी जान की, यही बड़ी दादी जब क्लास करा के आती थी, कुर्सी रख देती थी और कहती थी जिसको भी काम है आकर मेरे से मिले, मैं फ्री हूं, अवेलेबल हूं। दादी जानकी भी व्हील चेयर पर कॉन्फ्रेंस हॉल में आती थी, क्लास कराती थी। लोगों ने पूछा आप कार में आ सकते हैं, आप व्हील चेयर पर क्यों आ रहे हैं? दादी जानकी ने कहा कि मैं लोगों को देख रही हूं, बात कर रही हूं, दृष्टि दे रही हूं, वो मेरे से बात कर रहे हैं। कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम लोगों से जुड़े हुए नहीं है, सिंपल नहीं है, सैंपल नहीं है, तो राजा नहीं बनेंगे। वहां राजा का पहला ही कैरेक्टर होता है वो लोगों के भले के लिए अवेलेबल है। जब भी कोई आए वो अवेलेबल है। इसीलिए बाबा ने कहा मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा, एक आंख से मुक्ति, दूसरे आंख से जीवन मुक्ति का वर्षा देना है। और आने वाला समय वही रहेगा, और मैं देख भी रहा हूं आने वाला समय नहीं, शुरू ही हो गया है। लोग अब कुछ नहीं चाहते, वो सीधे कहते हैं हमें ये चाहिए, हमें प्रेम चाहिए, शांति चाहिए, शक्ति चाहिए, वो अपनी डिमांड रखते हैं। कस्टमर केयर सर्विसेस हो गई हैं। आप जिसको प्यार चाहिए उसको कहोगे शांत स्वरूप हो, शांत स्वरूप हो, उसको चाहिए ही नहीं। बचपन से उसको जो नहीं मिला था उसको वो चाहिए। साइकोलॉजी में तीन गुण, शांति, प्रेम, खुशी, ये तीन चीजें हरेक को चाहिए। प्रेम, शांति, खुशी, ये तीन गुण न होने के कारण ही न्यूरोटिक डिप्रेशन प्रॉब्लम आते हैं। मदर टेरेसा ने भी कहा था जाने के पहले कि सबसे बड़ी गरीबी कौन सी है, तो मदर टेरेसा ने कहा था सबसे बड़ी गरीबी दो है, अकेलापन, लोनलीनेस, और दूसरा कोई मुझे प्यार नहीं करता है। अगर कोई मुझे प्यार नहीं करता, कोई मेरी सुनता नहीं है, तो बीमारी आती है। हॉस्पिटल में भी रिटायर्ड लोग ज्यादा आते हैं, कहते हैं हमें भर्ती कर लो। क्यों? यहां सब आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, डॉक्टर आ रही, नर्स आ रही, सुन रहे हैं, घर में मेरी कोई सुनता ही नहीं है। तो क्या कैरेक्टर हो गया? लिसनिंग और प्यार। हाथ उठाएं और अपने को कहें आई लव यू, आई लव यू, बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, आई एम बेस्ट। जब कभी भी ऐसा लगे डाउन हो रहे हैं, कोई कुछ अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, तो हम खुद को ही करें। कोई नहीं कर रहा, सब बिजी हैं। पहले दादियां थी, कितना वो होता था, दादियां बुलाती थी, बैठो चाय पियो, ये करो, लीडरशिप थी। अब सब क्या हो गए, सब भाग रहे हैं, सब बिजी हैं अपने में ही, एक मैकेनिकल हो गए। और अब इस मैकेनिकल सोसाइटी में क्या करना है, चाहे बाहर चाहे कहीं भी, खुद को खुद प्यार करना है। हाथ उठाए, आई लव यू, आई लव यू। अगर ऐसा रोज करोगे 5 बार, बीमारी नहीं होगी। इल का अर्थ ही क्या है, आई एल एल, इल का अर्थ ही क्या है, बीमारी। पर एक डॉक्टर ने बहुत अच्छा इसका मीनिंग दिया, इल का अर्थ है आई लैक लव, आई लैक लव। खुद को देख ही नहीं रहा हूं, खुद से बात ही नहीं कर रहा हूं, भाग रहा हूं। पहले खुद की सेवा करूंगा तो फिर दूसरी सेवा भी होगी। मैं ठीक हूं, मेरी हेल्थ ठीक है, तो दूसरी सेवा करूंगा। तो स्व सेवा विश्व सेवा दोनों का बैलेंस हो। विश्व कल्याणकारी भी बनना है तो मेरे वाइब्रेशन पूरे यूनिवर्स में जा रहे हैं, वो मेरी खुद की वृत्ति के ऊपर डिपेंड है। मेरा एटीट्यूड, जो मैंने कहा एक इंग्लिश मीनिंग है वृत्ति का, एटीट्यूड। एटीट्यूड का अर्थ है मैं हुई। शेर जंगल का राजा है, पर शेर से स्ट्रांग हाथी है, वजन में हाथी है, हाइट में हाथी है। जिराफ हाइट में बड़ा है, लोमड़ी चालाक है, इंटेलिजेंट है। शेर ना बड़ा है, ना हेवी है, ना चालाक है, फिर भी जंगल का राजा है। क्यों? क्यों? हाथी चाहे तो एक पांव उसको मारे तो खत्म कर सकता है, इतना स्ट्रांग है हाथी। हेवी है, हाइट में भी बड़ा है, जिराफ बड़ा है, लोमड़ी चालाक है। शेर में तीनों कैरेक्टर नहीं है, पर वो जंगल का राजा है, क्योंकि वो सोचता मैं हुई जंगल का राजा। जब हाथी सामने आता है शेर के, तो शेर सोचता है मजा आ गया, आज तो मेरा खाना हो गया। हाथी क्या सोचता है? अरे बाप रे, आज तो गया। तो दोनों के फर्क क्या हुए? एटीट्यूड, एटीट्यूड। इसीलिए बाबा हमें क्या सिखाता है? सम्मान सिखाता है। जितना हम अपने को सम्मान देंगे, स्व को मान देंगे, उतना हमारा वर्थ बढ़ेगा, सेल्फ वर्थ बढ़ेगा। इसीलिए कभी भी अपने सम्मान को, स्वमान को कम न करें। फिर से उठाएं, मैं परमात्मा की श्रेष्ठ संतान हूं, बाबा मेरे साथ है, वह मेरा पाठ। खुद को चार्ज करें, जब कभी भी लगे डाउन हो रहे हैं, खुद को एनर्जी डालें। वो एनर्जी ड्रिंक तो चलता है, इम्यूनिटी भी 10% फिजिकली रहती है, 90% इमोशनल रहती है, 90% इमोशनल रहती है, केवल 10% ही डाइट रहती है। इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है जो बाबा सिखा रहा है? अपने को सम्मान देते रहो, स्व को मान देते रहो। मैं भी करता हूं, स्व को जितना मान करेंगे उतना वो कैरेक्टर मेरे डीप जाएगा और वो मेरी वृत्ति बन जाएगी। फिर हरेक में मैं गुण ही देखूंगा, अवगुण नहीं देखूंगा। हरेक में, जैसे ब्रह्मा बाबा ने भी क्या किया, हरेक के गुण देखता था, प्रकृति के भी गुण, फूलों के भी गुण, हर चीज से वो सीखने का आर्ट होना चाहिए। चाहे मधुमक्खी है, बम्बल भी है, हर एक चीज का बाबा ने वर्णन किया मुरलियों में। हमें किसी के अवगुण को देखना ही नहीं है, देखना ही है तो केवल हरेक के गुण को देखना। गुण को देखेंगे तो हमारे में भी गुण आ जाएंगे। इसीलिए हमेशा एक दूसरे को जब देखो और कहो, हाँ देखो और कहो, देखो और कहो, बहुत अच्छे हो, यू आर सो गुड, बोलो बोलो, हाँ बोलो, एक दूसरे को देखकर, यू आर सो गुड, सो ब्यूटीफुल, सो नाइस, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम ब्यूटीफुल, I am beautiful. खड़े हो जाएं।
चले चले रे धारा। नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा,
तुझको चलना होगा, तुझको चलना
नहीं है। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आधी से तूफान से डरता नहीं है। तू न चलेगा तो चलते गिरा है, वो तू न चलेगा तो चलते मंजिल को तरसे की तेरी निगाहें। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा,
तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा,
तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
जो भी रुका फिर गया वो भंवर में, नाव तो क्या बह जाए किनारा, ओ नाव तो क्या बह जाए किनारा। बड़ी ही तेज समय की है धारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा,
तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
ओ नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा,
तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
एक स्टेटमेंट है, योर एटीट्यूड डिटरमाइन योर एल्टीट्यूड। आपका एटीट्यूड ही आपको टॉप पर ले जाता है। चाहे हम पढ़े लिखे हैं नहीं है, इंटेलिजेंट हैं नहीं है, डिग्री है नहीं है, पर एटीट्यूड अगर पावरफुल है तो कहीं भी पहुंच सकते हैं। जिन जिन का एटीट्यूड पावरफुल था वो लोग टॉप पर गए। आईक्यू पढ़ाई 20% सक्सेस देती है, 80% होता है हमारा ईक्यू, हमारा एटीट्यूड, दृष्टिकोण। तो उसको हमेशा, वृत्ति को हमेशा पावरफुल पॉजिटिव बनाओ, पर्पसफुल बनाओ, पॉजिटिव भी हो पावरफुल भी हो,
और बाबा ने कहा वृत्ति को पावरफुल बनाने का रास्ता एक शुद्ध संकल्प और प्योरिटी पवित्रता। जितनी क्लियरिटी होगी मन की बुद्धि की उतना सक्सेस रेट ज्यादा होगा। जितना ट्रांसपेरेंसी होगी, ट्रांसपेरेंसी का अर्थ है अंदर बाहर एक, ट्रांसपेरेंट को हम कह लें फरिश्ता टाइप, लाइट ही लाइट, अंदर और बाहर एक है। जितना मैं ट्रांसपेरेंट हूंगा उतना मैं ट्रांसफर कर सकता हूं। कौन व्यक्ति वाइब्रेशन ट्रांसफर कर सकता है? जो अंदर बाहर एक है, शुद्ध है, 24 कैरेट है, क्लियरिटी है। शुद्ध का अर्थ है क्लियरिटी है, किसी के लिए उसको दुर्भावना है ही नहीं, कोई गलत नहीं है, किसी को वो पिन पॉइंट नहीं करता कि ये गलत है। जो भी हो रहा है वो ड्रामा अनुसार हो रहा है, उसमें मेरा भी पार्ट है। तभी मैंने कहा निस्वार्थ निसंकल्प भावना, तब वो ट्रांसफर कर सकता है एनर्जी को, वाइब्रेशन को। आत्मा है ही बंडल ऑफ एनर्जी, सोल का अर्थ ही है एनर्जी, कॉन्शियसनेस, और ये एनर्जी लाइट का पुंज, प्रकाश का पुंज, वेव्स की तरह जाता है और पूरे यूनिवर्स में कनेक्ट होता है। एक जगह बैठकर हम सेवा कर सकते हैं। अब वो जो भागते थे हम सभी भाई बहन, अब थोड़ा कम करके फोकस करें मनसा सेवा पर, और उसके रिजल्ट ऑटोमेटिक आते हैं। ब्रह्मा बाबा भी बैठकर 2 बजे से मनसा सेवा करते थे, और उसी का प्रोडक्ट हम सभी हैं। दादियां भी, जो उन्होंने टीम बनाई दादियों की भी, सभी दादियां ऑलमोस्ट पावरफुल बनकर मनसा सेवा करी, और अंदर उनके कभी भी कोई नेगेटिविटी नहीं रही किसी के लिए भी। मेरे को याद है एक बार दादी गुलजार जी से कोई इंटरेक्ट कर रहा था, तो दादी ने कहा नेगेटिविटी क्या होती है, आप लोग बहुत बोलते रहते हो, होती क्या है? इतनी क्लियर थी। एक बार एक बहन आकर बोलने लगी ये हुआ, हॉस्पिटल गई। बोला क्या हुआ? कोई बड़ी बात नहीं, होता है, हर कोई बीमार होता है। यानी बिल्कुल क्लियरिटी थी, ड्वेलिटी नहीं थी, ड्रामा पर निश्चय था, जो हो रहा है वो ड्रामा अनुसार हो रहा है, उसको हमें एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। तो एंड करते हैं वृत्ति द्वारा सेवार्थ, मीन्स मनसा वाचा कर्मणा तीनों से एक साथ सेवा करना, वातावरण को हल्का करना, वाइब्रेशन की एनर्जी के द्वारा वातावरण को जितना हम हल्का करते जाएंगे, उसमें चाहे कुछ भी मैं ऐड करूं, हर कोई इसमें कर सकता है, चाहे कोई बड़ा है छोटा है, कोई सीनियर है जूनियर है, कुछ नहीं, कुछ भी मैं ऐड करूं इस यूनिवर्स को बेटर बनाने के लिए, तो वो वृत्ति से मैं सेवा कर रहा हूं। मैं फिजिकल सेवा नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, वाचा सेवा नहीं कर सकता, कोई बात नहीं, पर मनसा सेवा तो कर ही सकता हूं ना, शुभ भावना शुभ कामना तो दे ही सकता हूं ना। इसका यंत्र ही क्या है? शुभ भावना शुभ कामना देते रहो, वही हमारी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या है? शुभ भावना शुभ कामना। कोई कैसी भी आत्मा आए, शुभ भावना शुभ कामना, यही ब्रह्मा बाबा ने भी किया। कोई भी उनके सामने आया, कोई नेगेटिव भी आया, शुभ भावना शुभ कामना। इवन उस समय जंगली जंगल था पूरा, जब यज्ञ यहां ट्रांसफर हुआ, स्नेक्स सब सांप सब अंदर आ जाते थे, तो ब्रह्मा बाबा ने कभी कुछ नहीं बोला कि इसको ये करो। वो बोलते थे जाओ बच्चे को छोड़ाओ, सांप को भी, सांप ने किसी को नहीं काटा, इतने स्नेक्स थे। क्यों? क्योंकि हरेक जो थे सबकी वृत्ति पॉजिटिव थी, शुद्ध थी, वाइब्रेशन पावरफुल थे, तो वो एनिमल भी आकर चले जाते थे। ब्रह्मा बाबा उनको भी वाइब्रेशन देते थे। ओम शांति, थैंक यू वेरी मच।
सभी कर्मणा वाचा तो सेवा करते ही हैं। आज के सेशन में वृत्ति द्वारा सेवा करने की आप सभी को युक्तियां मिली भ्राता जी के द्वारा। एक हाथ हिलाकर भ्राता जी का धन्यवाद, शुक्रिया, आभार।